சதாரிகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசஹிதம் கிருஷ்ணசைதன்யதேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபாதாங் சஹகணலலிதா ஸ்ரீவிசாகான்விதாம்ஸ்ச வாஞ்சாகல்பதரூப்யஸ்ச கிருபாசிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவ்ருந்த. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. உபதேசாமிரத் கே பஹலே ஸ்லோக் கே தாத்பரி மே ஹம் ஸ்ரீல பக்த சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் கே டீகா கி சர்ச்சா கர் ரஹே தே. ஆர் வாச்சோ வேகம் கி சர்ச்சா ஹோ ரஹீ தி. இஸ்மே ஹம் கல் தேக் சுகே ஹே वो नया चार्ट बनाया है ना, फिर कल जो था उसमें नोट्स में बनाया है. ओके, तो फिर और हंस की चर्चा भी हम कर रहे थे. भक्तों की तुलना हंस से की गई है और अभक्तों की तुलना कौओं से. कृष्ण कथा ये वो स्थान है जहाँ भक्त या हंस रहा करते हैं, और कृष्ण कथा को छोड़कर जो अन्य बातें हैं वो उन स्थानों के समान हैं जहाँ पर कौवे रमण करते हैं. और ये बातें भागवत के पहले स्कंद के पांचवें अध्याय के दसवें श्लोक में था, नयत वचस चित्रपदम हरे यशो. तो इस श्लोक का उल्लेख करने के बाद अब इसके बाद वाला श्लोक भागवत का वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं. हाँ, कौन पढ़ेंगे आज? पढ़ोगे नीलेश? तद्वाग विसर्गो से शुरू कर. इसके पहले वाले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने या व्यास देव जी ने ऐसे पुस्तकों का या ऐसे साहित्यों का ऐसे बातों का वर्णन किया है जो कि कृष्ण का गुणगान नहीं है, और इसलिए कौवे की तुलना की है. तो ये उदाहरण था कि कैसे हमारी बातें भगवान के बारे में या भगवान से हटकर नहीं होनी चाहिए. और यहाँ इस श्लोक में भागवत में ये बताया जा रहा है कि कैसे हमारी बातें होनी चाहिए, कैसे ये कृष्ण के संबंध में होने चाहिए. और यदि इन बातों में कोई त्रुटि भी है, जैसे कि कोई कृष्ण कथा कर रहा है और उसकी भाषा कुछ ठीक ठाक नहीं रही व्याकरण की दृष्टि से, या तो फिर उसने किसी श्लोक का उच्चारण सही नहीं किया या उसने जो साहित्य की रचना की उसमें थोड़ी बहुत गलतियां हैं, दार्शनिक गलतियां नहीं, ऐसे कोई व्याकरण या बाह्य गलतियां हैं, तो फिर भी ये बहुत मूल्यवान माने जाते हैं, क्योंकि जो साधु होते हैं वो ऐसे कथाओं को स्वीकार करते हैं। श्रीमंती गायंती गृणंती साधव, जो साधु लोग प्रमाणिक साधु होते हैं वो ऐसे कथाओं को स्वीकार करते हैं, भले उनमें कोई व्याकरण आदि की त्रुटियां हों, क्योंकि ऐसे कथाएं श्री कृष्ण से संबंधित हैं और वो पूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करने के लिए योग्य हैं। और एक बात बताई गई यहाँ पर, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, जनता के अघ, अघम मतलब क्या है, पाप, विप्लव, विप्लव क्या है, क्रांति, तो जनता के पापी जीवन में क्रांति लाने के लिए ये कृष्ण कथा बहुत ही उपयोगी है। क्या मतलब है इसका, कि यदि कोई कृष्ण कथा कर रहा है और वो हृदय से भक्त है, सही परंपरा में है, तो फिर उसकी बातों से अन्यों के हृदय में पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। तो ये है कृष्ण कथा का लाभ। तो इसका सारांश कौन बताएंगे, अभी अभी जो चर्चा हुई इस श्लोक का सार तद्वा विसर्गो कौन बताएंगे, प्रिय गोविंद सिंह। पापी जीवन में क्रांति लाने का क्या मतलब है, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करते हैं, न केवल पापों को नष्ट करते हैं, पाप करने की प्रवृत्तियों को भी नष्ट कर देते हैं। तो अभी जो भागवत के दो श्लोक बताए गए हैं, इनकी तुलना कौन करेगा बता के, कि पहले श्लोक में क्या बताया गया था, दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है, कौन बताएंगे, भद्रसेन प्रभु। हाँ, हाँ, लेकिन जोर किसके ऊपर दिया है, क्या उद्देश्य क्या है उस श्लोक का, किसको, किस तरह के आदमी को प्रकट करने के लिए, उदाहरण। हाँ, 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 तो विषय क्या है यहाँ इस श्लोक में, हाँ, और वाणी किस तरह की वाणी का यहाँ चर्चा हो रही है, व्यर्थ बातों की चर्चा हो रही है इस श्लोक में, जो कृष्ण कथा नहीं है ऐसे बातों की चर्चा हो रही है। नयद वचस चित्र पदम हरेर यश, ऐसे बातें जिनमें श्री कृष्ण का गुणगान नहीं हो रहा है, ऐसी बातों की चर्चा इस पहले श्लोक में हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें यह बताया गया है कि कौवे जैसे आदमी ऐसे भौतिक बातों में रुचि लेते हैं, हालांकि हंसों की बात भी की है यहाँ पर, लेकिन मुख्य विषय क्या है इस श्लोक का, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बातें, और कौन करते हैं, कौवे जैसे आदमी। और हंस की बातें यहाँ इस श्लोक में क्यों की गई है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि हंस जैसे जो भक्त होते हैं वो ऐसे अभक्तों की बातें स्वीकार नहीं करते हैं, इनमें रमण नहीं करते हैं, परंतु मुख्य विषय है व्यर्थ की बातें। जो बातें कृष्ण कथा नहीं है उनके बारे में इस पहले श्लोक में वर्णन है और दूसरे श्लोक में बहुत अच्छा। तो इन दोनों श्लोकों में पहले श्लोक में ऐसी बातों की चर्चा की गई है जो कृष्ण कथा नहीं है और दूसरे श्लोक में कृष्ण कथा की बात की गई है। तो कृष्ण कथा जो नहीं है ऐसे कथा करने वाले लोग कौओं के समान हैं और ऐसी बातों में हंस समान भक्त रुचि नहीं लेते हैं। और दूसरे श्लोक में ये बताया गया है कि कृष्ण कथा ये कितनी पावन चीज है, सारे हृदय सारे दुनिया के हृदय को परिवर्तित कर सकता है, पाप नष्ट करते हैं और इसमें बाह्य त्रुटियां होने के बाद भी जो साधु होते हैं वो इनको स्वीकार करते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ श्रीकांत सेन प्रभु, इन दोनों श्लोकों का निष्कर्ष अभी क्या हुआ? इन दोनों श्लोकों में अभी दोनों श्लोकों को पढ़कर संदेश क्या मिलता है हमको, क्या अच्छा है और क्या नहीं है? पहले श्लोक में बताया है कि क्या अच्छा नहीं है, दूसरे श्लोक में बताया है कि क्या अच्छा है। श्री गोकुलानंद, क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है? क्या अच्छा नहीं है और क्या अच्छा है? पहले श्लोक में क्या बताया है? क्या अच्छा नहीं है, तो कौन सी चीज अच्छी नहीं है? हाँ, भगवान का गुणगान छोड़ के जो भी बातें हैं वो अच्छा नहीं है। और दूसरे श्लोक में क्या बताया गया है दयानंद प्रभु? सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, हाँ, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले श्लोक को स्वीकारना चाहिए या दूसरे को? दूसरे श्लोक में जो बताया है कि हमें कृष्ण कथा करनी चाहिए वो हमें करना चाहिए, ठीक है? तो आगे पढ़ो फिर, अभी इसका निष्कर्ष, वाचो वेगम का निष्कर्ष श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कैसे करते हैं ये अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके साथ वाचो वेगम ये चर्चा समाप्त करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और निष्कर्ष क्या है कि केवल कृष्ण कथा करने से, प्रजल्प करने की प्रवृत्ति से हम मुक्त हो सकते हैं और ये ऐसे हमारे वाणी का वेग जो है वाचो वेगम ये हम वश में कर सकते हैं। अब आगे मन की मांगे, मन की मांगों में क्या है, हम पिछली बार चर्चा कर लिए थे ना, मन की मांगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बताते हैं, देखिए आपके नोट्स देखिए, हाँ उसमें कौन से दो आते हैं, उदरवेग, उदरवेग मन के वेग ना, मन का वेग और क्रोध का वेग। तो श्रील भक्ति सिद्धांत के अनुसार ये दोनों वेग मनोवेग के अंदर आते हैं। तो अभी मन के मांगों के बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत चर्चा करेंगे। हाँ पढ़िए। तो अभी हम समझ रहे हैं कि मन और क्रोध ये दोनों वेगों को मनोवेग के अंदर क्यों भक्ति सिद्धांत कह रहे हैं, क्योंकि मन की जितने भी कामनाएं हैं जब पूर्ण नहीं होती हैं तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। गीता का कौन सा श्लोक है? जायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगार संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। तो काम जब संतुष्ट नहीं होता है तो व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। हाँ इसको जरा घुमा लेंगे। तो मन के वेग दो प्रकार के हैं, यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं। पहले है अविरोध प्रीति। तो ती मात्रा छोटी होनी चाहिए, प्रीति, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। ठीक है, अविरोध प्रीति में ये किससे उत्पन्न होता है? अनियंत्रित आसक्ति से। और ये अनियंत्रित आसक्ति जो है तीन प्रकार के होते हैं, मायावाद दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों का कर्म फलों में विश्वास और भौतिक इच्छाओं पर आधारित योजनाओं पर विश्वास। तो ऐसी जो श्रद्धा होती है या ऐसी जो आसक्ति होती है उससे क्या होता है? मन विचलित हो जाता है, मन स्थिर नहीं रह सकता है। और जब ये इच्छाएं चाहे मायावादी के निराकार में लीन होने की इच्छाएं हो, कर्मवादियों की स्वर्ग आदि की प्राप्ति की इच्छाएं हो, या भौतिक इच्छाओं पर आधारित योजना बनाने वाले जब उनकी योजनाएं असफल हो जाती हैं, तो तीनों ही श्रेणी के लोग जब अपनी अपनी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो उनका मन और भी विचलित हो जाता है, विरोध युक्त क्रोध, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं। कामात क्रोधो भी जायते, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध। हताशा अर्थात, हताशा का क्या मतलब है? निराश होकर, हत आशा, अपनी आशा भंग हो गई, हताश होकर, हार कर। तो इसलिए अब श्रील भक्ति सिद्धांत ने क्रोध वेग को भी मन वेग के अंदर उसी श्रेणी में रखा है। जब आप भी पढ़ाई करेंगे किसी भी किताब का, तो जहां जहां उपयुक्त है और जहाँ जहाँ आवश्यक है आप इस प्रकार के चार्ट बनाते जाइए ताकि आपको एक दृष्टि से सारा सार मिल जाता है सारी बातों का। ठीक है, आप ऐसे पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे सर? जब पढ़ते हैं तो इस तरह से आप पढ़िए ताकि आपको सही तरह से समझ में आएगा और अन्यों को समझाने के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा, ये मन के वेग के बारे में कौन समझाएंगे अपने शब्दों में? मधुकांत प्रभु समझाओगे ये क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं मन के वेग के बारे में? साधारण भाषा में, अपनी भाषा में समझाओ ताकि ऐसा व्यक्ति भी समझ ले जिसने उपदेशामृत कभी पढ़ा नहीं है। समझ लो कि तुम कहीं नामहट में गए हो, प्रचार कर रहे हो और बिल्कुल साधारण लोग हैं, उनको कैसे समझाओगे ये बात? विशेष करके ये दो श्रेणियां कौन सी हैं? अविरोध प्रीति क्या है और विरोध युक्त क्रोध क्या है? ये मन का वेग मतलब क्या है? मन का विचलित होना। ठीक है, मन के विचलित होने के दो कारण हैं। ठीक है, ऐसे साधारण भाषा में समझाने हैं। मन का वेग, वेग अर्थात क्या है? मन को धक्का मारते रहता है ना, ये करो वो करो, ये करो वो करो, तरह तरह की चीजें मन को विचलित कराने वाली चीजें हैं। तो मन के विचलित होने के दो कारण, पहला कारण क्या है? अविरोध प्रीति मतलब क्या है? ये लिखा है अनियंत्रित आसक्ति। जब हमारी आसक्तियां अनियंत्रित होती हैं, जब हमारी आसक्तियां गलत होती हैं, तब मन विचलित होता है। तो गलत आसक्तियों के कौन से उदाहरण हैं? बता, मायावाद दर्शन मतलब क्या? क्या कैसे विचलित होता? जब मायावादी अपने दर्शन में विश्वास रखता है कि यही जीवन का लक्ष्य है, मुझे उस निराकार की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान बनना है, तो ऐसी आशा, ऐसी चीजों में आसक्ति रखने से मन व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। भगवत गीता के 12वें अध्याय में कौन सा श्लोक है जिसमें बोलो दयानंद प्रभु? हाँ, क्या मतलब है इसका? आ सकते हैं। देहवत भी अवाप्यत अव्यक्ता ही गतिर दुखम। तो इस चीज के लिए ये 12वें अध्याय का श्लोक बिल्कुल उपयुक्त है। यहाँ अनियंत्रित आसक्ति की बात की गई है कि जो आसक्ति सही नहीं है और मायावादियों की जो आसक्ति होती है अव्यक्त निराकार के ऊपर जो आसक्ति होती है उससे क्या होता है? अव्यक्ता ही गतिर दुखम। ऐसे अव्यक्त के ऊपर आसक्त होने से क्या होता है?
दुखम क्लेश अधिकतर तेषां, ऐसे लोगों को बहुत अधिक क्लेश होता है। तो आसक्ति ही ऐसी होती है कि उस आसक्ति से ही मन को दुख होता है। वो इच्छा पूरी नहीं होती वो तो दूसरी बात है, लेकिन इच्छा पूरी करते करते ही के प्रयास में ही बहुत दुख होता है। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिनकी चेतना अव्यक्त में या निराकार में आसक्त है, ऐसे लोगों के लिए क्या है? अव्यक्ता ही गतिर दुखम। ऐसे अव्यक्त की जो गति होती है वो गति ही दुख की गति है। उस गति की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया जाता है वो प्रयास ही दुख से पूर्ण है। हाँ ठीक है। तो वैसे जो आसक्ति है, हाँ, वो आसक्ति से मन चल विचल हो जाता है। हाँ हाँ ये चर्चा जो हो रही है, याद है गोकुल धाम में ऐसी बात की चर्चा हुई थी, याद है? जब आए थे वो भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि चार प्रकार के ज्ञानी होते हैं, याद है? तो खैर यहाँ क्या है, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, जो भक्ति का सहारा नहीं लेते हैं, भक्ति योग का सहारा नहीं लेते हैं अपने निराकार के प्राप्ति के पथ में, और जो स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान का एक सच्चिदानंद स्वरूप है, तो ये श्लोक किसके लिए है, किन लोगों के लिए है? क्लेशोधिकतरस्तेषां, जो अपने ज्ञान योग के पथ में भक्ति योग की सहायता नहीं लेते हैं और न ही वो ये विश्वास करते हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं और उनका सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ऐसे जो आसक्ति होती है उससे दुख ही उत्पन्न होता है। और दूसरी बात क्या है, मन को विचलित करने वाली आसक्ति दूसरी कौन सी है निलेश? मन को विचलित करने वाली दूसरे प्रकार की आसक्ति कौन सी है? आसक्ति, हाँ, मन को विचलित करने वाले दूसरे प्रकार की आसक्ति कौन सी है? हाँ, कर्मवादियों का कर्म फलों में विश्वास। महाराज प्राचीन बहिष्यत की कहानी आप जानते हैं ना भागवत में, इतना सब करते हुए भी क्या वो शांत थे? फिर अंत में किन्होंने आके उनको उपदेश दिया? नारद मुनि ने। और क्या कहा उनसे? ये कर्मकांड छोड़ो और भक्ति के पथ को स्वीकार करो। इतना सब करते हुए भी वो शांत नहीं थे। उसी प्रकार से नैमिषारण्य में एकत्र हुए जितने ऋषि मुनि थे, तो वो सब अपनी ओर से यज्ञ आदि सब कर रहे थे, संतुष्टि नहीं मिल रही थी उनको, फिर भी मन चल विचल हो रहा था। लेकिन जब सूत गोस्वामी से कृष्ण कथा सुनी तब उनका मन संतुष्ट हो गया। तो कर्मकांड का पथ भी ऐसा है, भले व्यक्ति को थोड़े समय के लिए कोई भौतिक सुख मिल जाए, थोड़ा समय अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति ये भी थोड़े समय के लिए ही होती है, भले ये लाखों लाखों साल भी हो। तो ऐसे कर्मकांडीय जो उपासक होते हैं उनका मन भी चल विचल होते रहता है। और तीसरा श्रेणी कौन सा है प्रेमदीप प्रभु? हाँ, जो भौतिक इच्छाओं पर आधारित योजनाओं पर विश्वास करने वाले हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, निराकार में विश्वास नहीं करते हैं, वो क्या चाहते हैं? केवल भोग करो। न भगवान को मानते हैं, न निराकार को मानते हैं, न शास्त्र को मानते हैं, कर्मकांड को कुछ नहीं, वो केवल अपने स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहते हैं, नास्तिक भोगी। तो ऐसे व्यक्ति अपनी योजनाओं में बहुत श्रद्धा रखते हैं, हम ऐसे करेंगे, हमें ये मिलेगा, जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ईश्वर वहम अहम भोगी। तो ये सब वर्णन जो 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण करते हैं, तो ऐसे लोग कभी सुखी हो सकते हैं? ऐसे आसक्ति से जब अपना प्रयास कर रहे होते हैं तो वो हमेशा विचलित रहते हैं। जो रजोगुणी आदमी रहता है वो हमेशा विचलित रहता है, कभी शांत नहीं होता। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मन के विचलित होने का ये पहला कारण है कि हमारी गलत आसक्तियां हैं। कृष्ण में आसक्ति नहीं है। कृष्ण में आसक्ति नहीं होना मतलब इन तीन चीजों में आसक्ति होना, इनमें से एक या अधिक चीजों में आसक्ति होना। तो इससे मन विचलित होता है। और दोबारा मन और भी विचलित कब होता है? जब ये इच्छाएं जो हैं ये पूर्ण नहीं होती हैं, तब उसे क्या कहते हैं? विरोध युक्त क्रोध। कामनाएं तृप्त नहीं होने के कारण जब क्रोध हो जाता है तो मन और भी विचलित हो जाता है। हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध, ठीक है। अच्छा, इसका सार कौन बताएंगे अभी? अनंत पद्मनाभ प्रभु, ये मन के वेग का सार संक्षेप में आप बताओ। मन के क्या उत्पन्न होता है? हाँ, किस चीज में फ्रस्ट्रेशन, किस चीज में हताशा, कौन सी इच्छाएं? हाँ, इसलिए आप पहले अविरोध प्रीति से शुरू करो। अनियंत्रित आसक्ति अर्थात जो गलत आसक्ति है। हाँ, दूसरा ठीक है, बहुत अच्छा। जो नास्तिक भोगी होते हैं, जो अपनी योजनाओं पर विश्वास रखते हैं, ये तीन प्रकार के लोग हैं, इनके लक्षण क्या हैं? इन तीनों में एक पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट क्या है? मन विचलित होता है किस कारण से? अनियंत्रित आसक्ति से। उनको अपने अपने पथ में अधिक आसक्ति होने के कारण क्या होता है? मन विचलित हो जाता है। तो ये विचलित होने का एक कारण है, कौन सा है? अविरोध प्रीति। और दूसरा कारण क्या है मन विचलित होने का? क्या मतलब है उसका? विरोध युक्त क्रोध। हताशा मतलब क्या, किस चीज में हताशा? इन तीन चीजों में जब व्यक्ति निराश हो जाता है, चाहे वो मायावाद हो, कर्मवादी हो, भोगवादी हो, जो कृष्ण भक्त नहीं है, तो वो इन तीन श्रेणियों में आएगा। तो इन तीन चीजों से, एक या दो चीजों से जो हताश हो गया है, जो अपने कामना को तृप्त करने में असफल हुआ है, तो फिर क्या होता है, उसको क्रोध आ जाता है और उस क्रोध से मन विचलित होता है। ठीक है, इस प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत मनोवेग की चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे शरीर की मांगे। हम पहले देखे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शरीर की मांगों में कितने श्रेणियां बताई थी, आपके नोट देखिए, तीन। कौन से? मन का तो हो गया, जिह्वा वेग, लाइन में आओ, उदर वेग, फिर उपस्थ वेग। तो शरीर के वेग में तीन प्रकार हैं। कौन से हैं? जिह्वा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग। हाँ, तो आगे पढ़ो। ठीक है, तो कुछ है इसके बाद, क्या है इससे संबंधित है? हाँ, तो शरीर के वेग तीन प्रकार के, जीभ का वेग, उदर का वेग और जननेन्द्रियों का वेग, और प्रसाद ग्रहण करने से ये नियंत्रित हो जाते हैं तीनों, और आगे चल के इसकी चर्चा करेंगे। क्यों? प्रसाद ग्रहण करने से तीनों कैसे नियंत्रित हो जाते हैं? केवल जीभ होना चाहिए ना नियंत्रित। यह इस परिच्छेद में क्या कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? हाँ, तीनों एक ही लाइन में आते हैं, तो फिर हाँ, तो जब जीवा जो सबसे ऊपर है उसको वश में किया जाता है, तो उदर और उपस्थ अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। ठीक है, और जीभ को नियंत्रित करने के लिए क्या चाहिए? कृष्ण प्रसाद। इसलिए कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से जीभ, उदर, जननेन्द्रिय ये तीनों ही वश में आ जाती हैं। ठीक है, जो अभी समय हो गया ना प्रसाद का, तो हमारे जीभ, उदर और जननेन्द्रियों को वश में करने का समय आ गया है कि नहीं? ठीक है, हाँ जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि तीन संभावनाएं हैं। एक, इनका हम गलत उपयोग करें। दूसरा, कृत्रिम रूप से उनको नियंत्रित करने का प्रयास करें, जो कि सफल नहीं होगा। और तीसरा है इनका सदुपयोग करना। तो इंद्रियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, इंद्रियों को तो इस्तेमाल करना है, परंतु ये तीन विचार हमारे लिए हैं। कौन से तीन हैं? गलत उपयोग, कृत्रिम उपयोग और सदुपयोग। ठीक है ना, ये आपको तीन चीजें याद है ना, हम चर्चा कर चुके हैं। कौन से तीन चीजें हैं मधुकांत प्रभु? दुरुपयोग, कृत्रिम उपयोग, सदुपयोग। तो अभी ये आप बताओ कि ठीक है, वाणी के लिए या जीभ के लिए कैसे ये तीनों का उदाहरण दो, दुरुपयोग क्या है, कृत्रिम उपयोग क्या है और सदुपयोग क्या है। नहीं, अनलिमिटेड वो उधर की बात हुई। जो कृष्ण प्रसाद नहीं है वो खाना वो दुरुपयोग है, कृत्रिम उपवास करना, कुछ भी नहीं खाना क्या संभव है? थोड़े समय तक, लेकिन दीर्घ काल में नहीं। और सदुपयोग कृष्ण प्रसाद। उसी प्रकार से वाणी, वाणी के लिए कैसे? हाँ, तीनों श्रेणियों में बताना। हाँ, वाणी का दुरुपयोग होता है भौतिक बातें करने से, कृत्रिम उपयोग है मौन व्रत धारण करने से। क्या वे सफलता प्राप्त होगी इसमें? विफल हो जाते हैं। तीसरा सदुपयोग कृष्ण कथा। तो हमारी इंद्रियों को का सदुपयोग करने मात्र से इन वेगों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इन वेगों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो जब हम वेगों को नियंत्रण करने की बात करते हैं तो हम इनका सदुपयोग करने की बात करते हैं, इंद्रियों का। ठीक है, नियंत्रित करना मतलब उनको दबा के रखना नहीं है, क्योंकि वो कृत्रिम हो जाएगा। लेकिन सदुपयोग करना, कृष्ण के लिए इस्तेमाल करना, वो सदुपयोग है। और ऐसे सदुपयोग से ही इन वेगों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए अभी हम सब इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लें कृष्ण प्रसाद लेकर। हरे कृष्णा, हरि बोल।